विषय है संस्कार और कर्म। हम सब जानते हैं हर मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और ये प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। जैसा जैसा उसको वातावरण मिलता है, जैसे जैसे लोग उसको मिलते हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार होता है, हर चीज उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हम जितने भी कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर तो पड़ता ही है, दूसरों पर भी मेरे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। मेरे कर्म के द्वारा मेरे ही परिवार के लोग कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं कभी अप्रसन्न होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं जितने भी कर्म करता हूं वो सुखरूप और दुखरूप होते हैं, उनका प्रभाव मिश्रित होता है। इसीलिए जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे मेरे कर्मों का परिवर्तन भी होता है, परिस्थितियों के अनुसार, आयु के अनुसार, और मेरे मन की जो वासना है या इच्छाएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता है समय के अनुसार। तो इस संसार में मेरा जितना भी व्यवहार है कर्म के द्वारा, ये निरंतर परिवर्तनशील है। और निरंतर परिवर्तनशील होने के कारण मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं उनका प्रभाव भी जो मेरे मन पर होता है, अन्य लोगों पर होता है, उसमें भी निरंतर परिवर्तन आ रहा है। मैं हर प्रकार से सुखी होना चाहता हूं और मेरे साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी मेरे द्वारा केवल सुख चाहते हैं। ये हर मन के हर व्यक्ति के मन की इच्छा होती है, ये नेचुरल इच्छा है, इसके बारे में किसी सोच की जरूरत नहीं होती। हमारे परिवार में कोई बालक पैदा होता है, बड़ा होता है, जो उसकी शादी की आयु आती है, तो हर माता पिता बच्चे की शादी के बारे में जब सोचते हैं उस सोच के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा बेटा सुखी हो जाएगा या मेरी बेटी सुखी हो जाएगी और हम भी सुखी हो जाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य कल्पना नहीं होती। इस कार्य कर्म को करने के लिए उसके पीछे एक ही कल्पना होती है कि विवाह करने के पश्चात हमको या परिवार को सुख की प्राप्ति हो। लेकिन सारे समाज का विश्लेषण करने के पश्चात हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं? कुछ लोग सुखी हो जाते हैं और कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, या कुछ लोगों को कुछ सुख मिलता है कुछ दुख मिलता है। आजकल का वक्त ऐसा आ गया कि लोगों का व्यवहार अशुद्ध हो गया। कहते कुछ हैं, पीछे वास्तविकता कुछ और होती है। इसलिए देखा होगा आपने कि आजकल शादियों के लिए बड़ी खोजबीन होती है, बच्चों की आयु, कुछ तो पढ़ाई के कारण, कुछ इस चिंता फिक्र के कारण, अविश्वास के कारण आयु बढ़ती रहती है और शादी हम नहीं कर पाते। तो ये अनिश्चय की हालत इस लोक में लोगों के बीच बनती चली आ रही है, किसी व्यक्ति के चरित्र का ठीक पता नहीं रहता। इसका कारण यही है कि आम व्यक्ति का चारित्रिक पतन निरंतर हो रहा है। ये प्रक्रिया बढ़ती चली आ रही है, चरित्रवान लोगों की कमी होती चली आ रही है, ये हम सबका अनुभव बताता है। इसीलिए विवाह करने में आज भय लगता है, पता नहीं विवाह के बाद क्या, कि जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, कहीं तलाक तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार का भय समाज के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का यदि आप कारण देखिए वो एक ही कारण है कि मनुष्य के अंदर कामनाएं या इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे पैसे का विकास हो रहा है, पढ़ाई का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, ये विकास की गति मन को कहां ले जा रही है, मन के अंदर इच्छाओं का प्रसार भी हो रहा है। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो हम सब जानते हैं कि इसके लिए संसाधन ज्यादा चाहिए, संसाधन ज्यादा चाहिए उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए तो उसके लिए एजुकेशन अच्छी चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अच्छी एजुकेशन के लिए बच्चों में काबिलियत कहाँ होती है, कोई बच्चा होशियार होता है कोई साधारण होता है। इच्छाएं तो नकल करके हम पैदा कर लेते हैं एक दूसरे को देखकर, लेकिन उस इच्छा पूर्ति के लिए संसाधन हम नहीं जुटा पाते। जब नहीं जुटा पाते तो मानसिक क्लेश शुरू हो जाता है। अक्सर आजकल एक जो कस्बों में ये बात ज्यादा देखने को मिलती है, जब परिवार में किसी लड़के की शादी होती है तो वो मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, अपनी कमाई से तो वो खरीद नहीं सकता, कहता है शादी में मुझको एक मोटरसाइकिल मिल जाए। फिर वो सौदेबाजी होती है, अब कस्बों में गांव में इतना पैसा तो लोगों के पास नहीं होता, उसके पास होता है लेकिन बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल की डिमांड एक आम बात बन गई है। 50,000 से कम में मोटरसाइकिल नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा 300 आती है, तो बताइए एक कस्बे का व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति कहां से 50,000 रुपए इकट्ठे करेगा। लेकिन लड़की की शादी करने से करना पड़ता कहीं ना कहीं से, तो ये सौदेबाजी, ये तनाव माता पिता के मन में बना ही रहता है। शादी की थी खुशी के लिए, बच्चे पैदा किए थे खुशी के लिए, लेकिन सारा जीवन हम तनाव में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं। इस समाज की हम बुराई भी करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिस बात के लिए समाज की बुराई कर रहे हैं वो बुराई मेरे अंदर भी घर कर चुकी है, मैं भी उसका शिकार। दूसरे की तरफ तो उंगली उठाना बड़ा आसान है लेकिन अपनी तरफ उंगली उठाना ये बड़ा कठिन काम, हम ये काम नहीं करते। इसीलिए सारे समाज में दोष दर्शन करने की आदत पड़ गई है, और वास्तव में भी जनता के अंदर दोषों की वृद्धि हुई, जिसको महाराज जी कहते हैं प्रेमी ये पूरी प्रकृति जो आंख से दिखाई पड़ रही है इसका निर्माण 5 तत्व से हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन 5 तत्वों के 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो यदि हम सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, सांसारिक इच्छाएं पैदा करते हैं, सांसारिक विकास करते हैं, तो इस आम जनता को यह पता ही नहीं होता कि हम विकारों का विकास कर रहे हैं। हमारी इच्छाओं का काम की वृद्धि हो रही है, क्रोध की वृद्धि हो रही है, मोह की वृद्धि हो रही है, लोभ की वृद्धि हो रही है, अहंकार की वृद्धि हो रही है, और ये साधारण रूप में आपको हर व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। जब लोभ की वृद्धि होती है तो आपको वस्तुएं चाहिए, पैसा चाहिए, समाज से, संसार से, लोगों से आपको वस्तुएं चाहिए और पैसा चाहिए। इसलिए मनुष्य जब अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं कमाई कर पाता तो वो बेईमानी शुरू कर देता है, धोखा देना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के अंदर इच्छाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इन विकारों की वृद्धि हो रही है। तो जिस समाज में इन विकारों की वृद्धि होगी तो मनुष्य के मन में चैन की वृद्धि होगी या बेचैनी की वृद्धि होगी, ये पूरी सोसाइटी का, पूरे संसार का ये साधारण सा विशेषण है। ये विशेषण करने का ये आध्यात्मिक तरीका है। इसीलिए जो प्राकृतिक जीवन है, जिसको इच्छा पूर्ति का जीवन कहते हैं, इसको विकारी जीवन कहा जाता है। और विकारी जीवन का मतलब होता है जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होगा, जैसे जैसे इस जीवन को अपनाएगा, उसकी मानसिक बेचैनी में वृद्धि होगी। हम जब 5 साल के थे, याद तो हमको नहीं होगी, लेकिन माता पिता जानते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए, 2-4 चीजों के लिए बच्चा बेचैन होता है। लेकिन जब बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए बेचैन होते। सारी दुनिया को हमने देखना सीख लिया, लोगों को देखना सीख लिया, तो लोगों के कारण हम बेचैन होते हैं, प्रकृति के कारण हम बेचैन होते हैं। मौसम बिगड़ता है तो बेचैन हो जाते हैं, ज्यादा सर्दी पड़ती है तब बेचैन हो जाते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ती है तब बेचैन हो जाते हैं। तो मनुष्य के कारण भी बेचैन होते हैं, बाहरी प्रकृति के कारण भी हम बेचैन होते हैं, सोच के कारण भी बेचैन होते हैं। एक बालक 5 साल का ये नहीं सोचता कोई मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, लेकिन हम सोचते हैं कि हमको कोई धोखा तो नहीं दे देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सांसारिक तरीके से कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी कमाई कर लो, और कितने भी सुख के संसाधन इकट्ठे कर लो, आपके अंदर यही कहें कि आपके मन में बेचैनी की वृद्धि होगी ही, इसको आप रोक नहीं सकते। इसीलिए सत्पुरुष हमारे इस स्वभाव को समझते हैं और हमारे स्वभाव को समझने के पश्चात वो हमको इस कर्म बंधन से आजाद करने के लिए जीने का एक तरीका समझाते हैं। कर्म बंधन से आजाद करने के लिए क्यों? क्योंकि हमारे सारे सांसारिक कर्म 5 विकार को लेकर होते हैं, 5 विकारों के अंतर्गत होते हैं। तो मुझको इस मानसिक बेचैनी से बचाने वाला संसार में कोई नजर ही नहीं आता। मैं रोगी हो जाता हूं, जब मानसिक रोगी होता हूं तो मनोवैज्ञानिक के पास जाता हूं, शरीर से रोगी होता हूं तो डॉक्टर वैद्य के पास जाता हूं, वो मेरे रोग का इलाज करते हैं। लेकिन इस वासना रूपी रोग का उनके पास कोई इलाज नहीं, इसके बारे में वो कोई एडवाइस नहीं करते। इसीलिए मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व है। जिसके जीवन में कोई ऋषि नहीं, जिसके जीवन में कोई सदगुरु नहीं, सदगुरु भी सामाजिक सदगुरु नहीं, जैसे आजकल का फैशन चल रहा है गुरुओं का, गुरु का मतलब ही होता है परमेश्वर, और परमेश्वर का मतलब होता है वासना रहित। आप उस गुरु की खोज करोगे तो उसके अंदर एक भी वासना आप नहीं ढूंढ पाओगे, वो पूरी तरह से वासना रहित होगा। आप महर्षि रमण का जीवन देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस का जीवन देख लीजिए, राम का जीवन देख लीजिए, कृष्ण का जीवन देख लीजिए, महात्मा मंगत राम जी का जीवन देख लीजिए, कबीर का जीवन देख लीजिए, गुरु नानक का जीवन देख लीजिए, जितने भी पूर्ण ऋषि हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, उनके जीवन में एक भी वासना आपको नहीं। तो इसीलिए ऐसा गुरु ही मेरा डॉक्टर बन सकता है। क्यों डॉक्टर बन सकता है? क्योंकि मुझको रोग वासना का लगा हो, और ये वासना तीन गुणों से युक्त होती है। या तो ये सतगुणी वासना होती है, जैसे कुछ लोगों को आपने समाज में देखा होगा, लोगों का कल्याण करते हुए, लोगों का इलाज करते हुए, कुछ लोग इनमें तकलीफ होती है किसी का रोग देखकर, उन्हें इच्छा होती है कि इसका रोग मैं दूर कर दूं। कोई किसी गरीब को देखता है, यदि उसके पास पैसा है तो कोशिश होती है इसकी गरीबी में दूर कर, सत्य बोलने की कोशिश करता है, किसी को धोखा देने की कभी कोशिश नहीं करता, ईश्वर का स्मरण करता है, प्रभु का भजन करता है, लोक कल्याण करता है, इसको सतोगुणी जीवन कहते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर वासनाएं होती हैं, लेकिन सतोगुणी वासनाएं होती हैं, अच्छे कर्म करने की वासना या अच्छे कर्म करने की इच्छा होती है। लेकिन एक कैटेगरी जो आम रूप से देखने को मिलती है समाज में, वो है रजोगुणी स्वभाव वाले लोगों। वो जो रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं, जो आम लोग होते हैं, उनके अंदर एक ही इच्छा होती है कि बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनने को मिले, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाने को मिले, बढ़िया से बढ़िया स्थान घूमने को मिले, और बढ़िया से बढ़िया स्थान रहने को मिले। तो सांसारिक सुख भोग की जिनकी कामना होती है, उसके लिए जो जीते हैं, इसको अध्यात्म में रजोगुणी वृत्ति कहा जाता है, रजोगुणी स्वभाव कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के लोग जो आप आम देखते हैं आप संसार में, वो होते हैं जो दूसरे का अधिकार छीन लेते हैं, दूसरे की वस्तु हड़प लेते हैं, चालाकियां मकारियां करते हैं, उनके कर्मों के द्वारा दूसरों को दुख मिलता है। ये काम परिवार के अंदर भी होता है और समाज के अंदर भी होता है, देश के अंदर भी होता है। तो ऐसे जो लोग हैं ये तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के स्वभाव हर व्यक्ति के मन में होते हैं, लेकिन किसी के अंदर सतोगुणी स्वभाव प्रबल होता है, किसी के अंदर रजोगुणी प्रबल होता है, किसी के अंदर तमोगुणी प्रबल होता है। यदि मनुष्य ने इस अध्यात्म विद्या को नहीं सीखा और प्रकृति के गुण दोष के बारे में उसने नहीं सीखा, ईश्वर के महत्व के बारे में जिसने नहीं सीखा, वो यदि आज सतोगुणी है तो हमेशा सतोगुणी बना नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे रजोगुण की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाए। ये प्रक्रिया मनुष्य के मन के अंदर निरंतर चलती रहती है, इसलिए या तो मनुष्य का निरंतर सुधार होता है या मनुष्य का निरंतर पतन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर मनुष्य सोसाइटी में रहता है, हर मनुष्य संगत में रहता है, जैसी जैसी उसको संगत मिलती है वैसा ही वैसा संगत के विचारों का प्रभाव, संगत के जीवन का प्रभाव उसके मन पर पड़ता रहता है और वहां से वो सीखता रहता है। इसीलिए जिनका प्राकृतिक जीवन है, जिनका देखा देखी जीवन है, कि दूसरों को देख के जो नकल करके जीते हैं, उनके स्वभाव में कभी भी बिगाड़ आ सकता है। इसलिए सत्पुरुष क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मनुष्य को किसी सत्पुरुष का संग करना चाहिए, सत्पुरुष के वचनों का संग करना चाहिए, सत्पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार चलने वालों का संग करना चाहिए। यदि ऐसा वो करेगा तो उसके अंदर सतोगुणी स्वभाव की वृद्धि होगी, वैसे संस्कार उसके अंदर बनेंगे वैसा स्वभाव उसका बनेगा। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं, जानते हम सब है लेकिन व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता। स्वभाव का निर्माण मैं खुद करता हूं, संस्कारों का निर्माण मैं खुद करता हूं, परंतु जिस समय मेरी देह का जन्म होता है उस समय ये संस्कार ये स्वभाव साथ लेकर मैं पैदा होता हूं, इस बात को भूल जाता हूं। इन संस्कारों को इस स्वभाव को मैं साथ लेकर पैदा होता हूं और उसी के कारण जब मैं बड़ा होता हूं तो आप देखते होंगे बिना संसार में कुछ सीखे घर में यदि तीन बच्चे हैं तो तीनों का स्वभाव अलग अलग तरीके का होता है। एक बालक देखा होगा घर में बड़ी शैतानियां करता है, बड़ा तोड़ फोड़ करता है, एक बालक दोस्तों की रक्षा करता है, बड़ा शांत स्वभाव का होता है, बड़ा प्रसन्नचित होता है, दूसरों को भी सुख देता है। ये स्वभाव उसने यहां नहीं बनाया है, ये वो पूर्व जन्म का अपने संग लेकर आया है। यदि इस एक बात पर मेरा ध्यान चला जाए, मात्र एक बात, तो पूरी जिंदगी मेरी पलट सकती है। हम सब देखते हैं इस बात के लिए, कई बार कह भी देते हैं अरे बड़ा बुरा भाग्य लेके पैदा हुआ है। यदि किसी के बालक के जन्म लेने के पश्चात घर में खुशहाली आ जाए तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा भाग्य लेके पैदा हुआ है, बस बात कह देते हैं, इस पर सोचते कभी नहीं। यदि ये अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुआ है तो पूर्व देह में जिसको हम पूर्व जन्म कहते हैं इसने अच्छे कर्म किए होंगे, इसने सतोगुणी कर्म किए होंगे, क्योंकि सतोगुणी कर्म का ही फल जो है वो सुखरूप होता है। अब वो जो स्वभाव मिला उसको सतोगुणी कर्म करने के पश्चात वो स्वभाव इसका बचपन से ही है। तो यहां आकर ऐसे जीव को पर ईश्वर की कृपा होती है और ऐसे जीव को ऐसा मौका मिलता है कि किसी गुरु से भेंट हो जाती है, किसी भक्त से भेंट हो जाती है, या ऐसी संगत उसको मिल जाती है जहां ये अध्यात्म विद्या उसको पढ़ने को सीखने को मिलती है। इस विद्या को पढ़कर वो इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि मैंने पिछले जन्म में ईश्वर की भक्ति की थी, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए मैंने कर्म किए थे, इसीलिए मुझको इस जन्म में इस प्रकार का स्वभाव मिला है, इस प्रकार की संगत मिली है, इस प्रकार का मौका प्रभु ने दिया, इसीलिए वो जो उसका सतगुणी स्वभाव था इस जन्म में उसको वो और मजबूत कर ले। फिर क्या होता है कि सतगुणी स्वभाव प्रबल होते होते एक ऐसी अवस्था आती है जो तीन गुणों से मुक्त अवस्था है, अर्थात सतोगुण से भी मुक्त है। इस अवस्था को ही निर्गुण अवस्था कहते हैं। और ये निर्गुण अवस्था किसकी होती है? उस जीव की होती है जिसने इस देह के अंदर उस अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव किया। उसका अनुभव प्राप्त करने के पश्चात ही ऐसा जीव इस अपने ही मन को बंधन करके देखने लगता है। सतोगुणी जीव परोपकारी भावना उसके अंदर है, लोक कल्याण की भावना उसके अंदर, प्रभु की प्रेम से याद उसको आती है, कि ऐसा जीव जानता है कि ये मन मेरा ही है, इस मन के अंदर सतोगुणी प्रभाव प्रबल है। लेकिन वो ये भी जानता है ये मन प्राकृतिक है और प्राकृतिक मन के अंदर सतोगुण के साथ रजोगुण और तमोगुण का भी अंश रहता ही है, केवल सतोगुण नहीं होता वहां, इसलिए उसका पतन कभी भी संभव। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी ईश्वर दर्शन हो जाने के पश्चात भी भक्त को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। उसके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि संकल्प मात्र से किसी का रोग ठीक कर सकता है, संकल्प मात्र से अंधे को रोशनी दे सकता है, लेकिन वो इस सिद्धि का उपयोग नहीं करता। वो जानता है उपयोग करने का मतलब है सतोगुणी वासना की वृद्धि करना। सारे जगत का कल्याण कर दूंगा मैं, सबके दुख दूर कर दूंगा मैं, सबके रोग दूर कर दूंगा मैं, ये बेअंत माया है। ये सारे गुण प्रकृति के अंतर्गत और प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, इसीलिए इस जन्म मरण के बंधन से ऐसा जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जीव ने ये मनुष्य जन्म लेकर निर्गुण होना होता है, प्रकृति से ऊपर उठना होता है, और प्रकृति से जो ऊपर है जो सत्ता, उसका नाम है ईश्वर। वही इस देह का संचालन करती है, वही इस देह का जीवन है, और उसी के अंदर आनंद है। संसार में सुख है और दुख है, संसार में आनंद नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अंदर आनंद है, ना वहां सुख है ना वहां दुख। यदि किसी भी मनुष्य को संसार में सुख चाहिए तो याद रखिए उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, उसे वो बच नहीं सकता। जैसे कोई विद्यार्थी कहे मुझको क्लास के अंदर टॉप पोजीशन चाहिए, मुझको बोर्ड के अंदर टॉप पोजीशन चाहिए, अब विचार करके देखो, एक संकल्प मात्र है। कोई नहीं जानता कि पूरी मेहनत करने के पश्चात भी वो बोर्ड को टॉप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर संकल्प आ गया। तो जिस दिन से संकल्प आया है और जिस दिन से उसने उस संकल्प की पूर्ति की कोशिश शुरू की है, उसका दर्द तो शुरू हो गया, उसका दुख तो शुरू हो गया, उसी वक्त से शुरू हो गया। आगे का कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। मान लिया मेहनत कर भी ले, वो योगी भी हो, लेकिन वो नहीं जानता उसकी देह कब रोगग्रस्त होने वाली, वो नहीं जानता। उसको ये भी नहीं पता इस देह की कब मृत्यु होने वाली। 8 महीने से सख्त मेहनत करी, दुख भोगा उसने, अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए दुख भोगा, गहरा दुख भोगा, लेकिन 8 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। विचार करने की बात है, 8 महीने का जीवन मिला था उसको, वो भी उसने खो दिया, अपनी ही इच्छा के कारण दुख पैदा करके वो 8 महीने का जीवन खो दिया। तो सर्वप्रथम दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हर मनुष्य जो भी संसार में आया है वो कर्म के बंधन में ही जीता है, कोई भी मनुष्य इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं। आप सुबह को आपकी आंख खुलती है, आप जागते हो, जागने से लेकर सोने तक आप निरंतर कर्म के बारे में सोचते रहते हो और कर्म करते रहते हो, और कर्म किस बेचैनी को लेकर हमारा दिन पास करता है, या कर्म करते हुए किस बेचैनी से हमारा दिन गुजरता है, यह हम सब जानते हैं। और यह प्रक्रिया महीने भर, साल भर, जीवन भर चलती ही रहती है निरंतर। इस कर्म के करते हुए सत्पुरुष कहते हैं मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए क्या रास की बात है, क्या गहरी बात है शास्त्र में। वो कहते हैं इस प्रक्रिया को अपनाकर भी, जीवन भर कर्म रत रहते हुए भी मनुष्य अंतर्यामी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात इस सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आनंद में स्थित हो सकता है। तो ये जो शास्त्रों का मार्गदर्शन है, सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, इसी वास्ते ये क्या सिद्धांत है, केवल एक सिद्धांत के लिए, क्योंकि जब तक सिद्धांत नहीं समझ में, उसकी आगे की प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आई। तो गीता में ये 18वें अध्याय में 2 श्लोक आते हैं, 45-46, वहां इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है कि संसारी कर्म करते हुए तू कैसे ईश्वर प्राप्त कर सकते। वहां कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्गण। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु किस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है? कहते हैं उस विधि को सुन। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण कि अब किस प्रकार से अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य उस परम सिद्धि को अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उस विधि को सुन। अब वो विधि पता है। कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सर्व जगत व्याप्त है, उदाहरण के लिए जैसे बर्फ को हम जानते हैं, तो बर्फ में पूरी तरह से क्या चीज व्याप्त है? जल इसमें व्याप्त है। जल के बिना बर्फ का एक कण भी नहीं, सब कुछ जल ही है। तो हम कह सकते हैं कि बर्फ जल से व्याप्त है या जल युक्त है। उसी प्रकार ये सारी सृष्टि उस ईश्वर सत्ता से व्याप्त है, उसके बिना इसका अस्तित्व ही नहीं। जैसे जल के बिना बर्फ का अस्तित्व हो सकता है? क्योंकि हमारी बुद्धि इसको आसानी से समझ लेती है कि जल के बिना तो बर्फ का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बात को नहीं समझ पाती कि इस जगत का जो अस्तित्व है ये बिना ईश्वर को हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए गीता भगवान कृष्ण का संदेश ये बात आपको क्लियर कर रहा है, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये बात थोड़ी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी में फंसे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस घर में मेरा जन्म होता है, जिस समाज में मेरा जन्म होता है, उस घर के बंधन के अनुसार, समाज के बंधन के अनुसार, और मैं जो अपना स्वभाव लेकर पैदा होता हूं, जो संस्कार लेकर मैं पैदा होता हूं, उस संस्कार स्वभाव के बंधन के अनुसार मेरे शरीर के द्वारा कर्म होते हैं। अब ये जो कर्म होते हैं, इसको वेद में चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो वो कहते हैं ब्राह्मण कर्म, जिसको हम जाति करके कहते हैं, ब्राह्मण जाति कर दिया हम इसको। उसके पश्चात क्षत्रिय कर्म, जो कि ब्राह्मण कर्म का मतलब जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की है और ब्रह्म विद्या का जो प्रचार प्रसार करता है, अर्थात धर्म का प्रसार करता है, जिसने पूरा जीवन शास्त्रीय धर्म के अनुसार व्यतीत किया और जिसके जीवन जो है जो अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों को धर्म की शिक्षा प्रदान करता है, इसको कहते हैं ब्राह्मण। उसके पश्चात आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होता है? जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात राज्य में धर्म का विध्वंस ना हो उसकी वो रक्षा करता है, अर्थात प्रजा की रक्षा, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जैसे राम क्षत्रिय। पांडव क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रिय जो कुल है ये संसार में धर्म की रक्षा करता है। तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं वाणिज्य, क्या होते वैश्य। तो जो वैश्य हम जानते हैं खेती का काम है, सारे व्यवसाय है, बिजनेस है, ये सारा सारा जो है इसके द्वारा हमको अनाज की प्राप्ति होती है, हमको वस्तुओं की प्राप्ति होती है, सारी जितने भी संसार का फैलाव है ये इन्हीं व्यापारियों की देन है, इन्हीं की वैश्यों की देन। इसके बाद चौथा आता है जिनका काम है सेवा करना, जिसमें सफाई भी आ जाती है, घर में नौकर चाकर होते हैं सेवा के लिए, वो भी आ जाते हैं। तो ये चौथी जाति के रूप में हमने इसको, कोई इसको शुद्ध कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वेदों में ये चार कैटेगरीज कर्म के आधार पर बनाई हैं और हम लोग उसको जाति के रूप में देखते हैं। तो वेद जाति की परमिशन नहीं देते, ये चार कैटेगरी कर्म के अनुसार है, जाति के अनुसार नहीं। तो ये जाति दोष समाज की देन है, ये वैदिक देन नहीं। तो मान लिया आप सबसे निचली श्रेणी ले लो, जिनका घर में लोगों की सेवा करना है या सड़कों पे झाड़ू लगाना है, तो कोई भी काम है छोटा मोटा, ऐसे लोग क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते? क्या उनका अधिकार नहीं? तो गीता यहां कह रही है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा ईश्वर को पूज कर, अपने अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा ईश्वर को पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। परम सिद्धि का मतलब होता है उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो अब बताइए, चाहे वो क्षत्रिय है चाहे वो शूद्र है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करनी। मान लिया एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मचारी, कूड़ा इकट्ठे करने वाला सफाई कर्मचारी, अब उसके अंदर भाव क्या है? एक भाव तो यह है कि मैंने बच्चे पालने हैं, अपनी देह का पालन करना है, नौकरी करनी जरूरी है, बिना नौकरी तो गुजारा होगा नहीं, इसीलिए मैंने ये पैसा कमाने के लिए नौकरी की। दूसरा उसके अंदर भाव ये है, यदि उसने गुरु धारण किया है, सत्संग का श्रवण किया है, उसकी बुद्धि के अंदर विवेक है, तो वो क्या सोचेगा? वो कहेगा प्रभु ने यही प्रारब्ध मुझको दिया है, इस स्वभाव को मैं लेकर पैदा हुआ, मेरे ही स्वभाव के अनुसार प्रभु ने ये कार्य मुझको दिया है, अब मैंने इस कार्य के द्वारा लोगों की सेवा की। और लोगों की सेवा के पीछे उसका भाव क्या है? कि जितने भी लोग मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरा प्रभु इन सबके अंदर उसी प्रकार विराजमान है जिस प्रकार वो मेरी देह के अंदर विराजमान है। इसलिए मैं यदि इनकी सेवा कर रहा हूं तो हड्डी मांस की सेवा नहीं कर रहा हूं। सामने जो मेरे उपस्थित मनुष्य है, इसके अंदर जो जान है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं और वो ईश्वर सत्ता है। तो मेरे कर्म का संबंध ईश्वर सत्ता के साथ है, इसलिए कर्म करते हुए हर पल उसके अंदर ईश्वर सत्ता मौजूद रहती है, ईश्वर का स्मरण मौजूद रहता है, वो ईश्वर उसकी आंखों से कर्म करते हुए ओझल नहीं होता, इसलिए बड़े प्रेम से सेवा करता है, उसी प्रकार सेवा करता है जिस प्रकार शबरी राम के आने से पूर्व अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रही है, साफ सुथरा कर रही है कि राम आने वाले हैं। तो झाड़ू लगाते समय भी इसको राम की याद है, और बेर भी खिला रही है तो चखकर खिला रही है, उसको होश ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूं, ये झूठे बेर में अपने प्रभु को खिलाने जा रहे हैं, उसको होश ही नहीं है इस बात, उसको एक ही होश है कि प्रभु के मुंह के अंदर कोई खट्टा बेर ना पहुंच जाए, मीठा बेर ही प्रभु को मैंने देना है। तो शबरी का जो कर्म है कहने को वो शूद्र थे, जो जाति वाचक जो जाति वाले लोग हैं प्रचार प्रसार करने वाले वो कहेंगे शबरी शूद्र, लेकिन राम से पूछो क्या है शबरी भक्त की। तो भक्त की श्रेणी सर्वोच्च है, तो चाहे वो शूद्र है सफाई कर्मचारी है लेकिन वो भक्त है। जिस प्रकार कल भी बात में आ रहा था, गीता के श्लोक में आता है कि सुदुराचारी बुरे से बुरा दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भक्त जो है वो साधु कहलाता है, उसको साधु कहते हैं। जिसने अपने मन को साध लिया है, कहां साध लिया है, ईश्वर में साध लिया, वो साधु। तो ये जो शूद्र है ये भी उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति करता है जिस प्रकार अर्जुन जैसा क्षत्रिय ईश्वर की प्राप्ति करता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। तो गीता ये रास्ता दिखा रही है कि हम जो कहते हैं कि हम तो बड़े कर्म में रत हैं, कर्म में लीन हैं, गृहस्थी लोग हैं, हमको गृहस्थ का पालन करना पड़ता है, हमारे लिए सिमरन का टाइम कम है, ये सारी बहानेबाजी। हम बिगड़े हुए लोग हैं, ना समझ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, हमने कोशिश ही नहीं की इस अध्यात्म विद्या को सीख। हमने कोशिश की कौन सी, पैसा कमाई करने वाली विद्या सीखने, बड़ा टाइम खर्च किया उसके अंदर, बड़ी मुसीबतें सही उसके लिए। हमने कोशिश की शादी ब्याह करने की, घर बसाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी ने हमको यह नहीं सिखाया समाज ने कि ये तो किस बंधन को कर्म करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे बंधन बहाने की तो कोशिश कर रहा है, वासना बहाने की कोशिश कर रहा है। ये मनुष्य जन्म मिला था वासना को घटाने के लिए, और तूने मनुष्य जन्म व्यतीत किया है वासना बहाने के लिए। इस वासना बहाने के मार्ग को ही सांसारिक जीवन कहा जाता है। ये है सांसारिक विकास। अच्छे दिन आएंगे, कहां तेरे अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन की आशा करता है कि अर्थात सुख के दिन आएंगे, बहुत चीजें भोगने को मिलेंगी, बहुत पैसा भोगने को मिलेगा। अरे मूर्ख, यदि किसी ऋषि से तेरा संबंध बना होता, तूने सही सत्संग श्रवण किया होता, या गीता ही समझी होती, या महाराज जी की ये वाणी ही समझी होती, तुझको अकल आ गई होती, फिर तू कहता ये बुरे दिन आएंगे। यदि पैसा बढ़ेगा भोग बढ़ेगा तो बुरे दिन आएंगे, क्योंकि वासना बढ़ जाएगी, वासना बढ़ेगी तो रजोगुणी स्वभाव प्रबल हो जाएगा, और रजोगुणी स्वभाव तमोगुण की तरफ ले जाता है। रजोगुणी स्वभाव तमोगुण की तरफ ले जाता है, इसलिए गीता चेतावनी दे रही है कि रजसः तु फलम दुःखम्, रजोगुण का परिणाम दुख होता है। मैंने कभी जिंदगी में ये बात सीखी, रजोगुण का परिणाम दुख होता है, मानसिक क्लेश होता है। जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत भोगलास करने को है, उसका मन बेचैनी के साथ ही रहेगा, उसका जीवन बेचैनी के साथ ही व्यतीत होगा, वो इससे बच नहीं सकता, और ये बेचैनी ही दुख है, चैन उसके भाग में है ही नहीं। तो चैन प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। आप बेचैनी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो अज्ञानता के कारण, आपको होश ही नहीं है क्या कर रहे हो। तो गीता आपको याद दिला रही है कि तू अपने स्वाभाविक कर्म करता हुआ भी मुझको प्राप्त कर सकता है, लेकिन किस प्रकार, जिस प्रकार शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, अपना कर्म छोड़ो क्या सुनो। ये सारे उदाहरण किस वास्ते हैं, इसी वास्ते हैं, तुम जहां हो जिस हालत में हो उसी हालत में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुमसे कोई काम छुड़ाया नहीं जा रहा, कर्म करने की भावना आपकी बदली जा रही है। जिस प्रकार सफाई करने वाला व्यक्ति वो एक ही चीज देख रहा है कि यहां गंदगी है, इस गंदगी से मेरे प्रभु दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे, जिस देह में, जिस मनुष्य के देह में वो निवास कर रहे हैं, वो देह जब रोगी होगी तो मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए जो कुछ भी मेरा अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, उसको मैं अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से पालन करूं। सुख दुख का तरफ उसकी निगाह नहीं है, उसकी निगाह केवल ईश्वर की तरफ, तो ये केवल ईश्वर पर निगाह की कब रहेगी? जब इस अध्यात्म विद्या को आप जानते होगे तभी तो रहेंगे। इसीलिए सत्संग का महत्व मानव जन्म में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे कीमती वस्तु मनुष्य जन्म में है तो वो सत्संग है। और सत्संग क्या होता है? इन शास्त्रों के मर्म को समझना, इन शास्त्रों के सूत्रों को समझना, इन सिद्धांतों को समझना। इसलिए समझना ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिद्धांत मैं कैसे अमल में लाऊं, इसलिए समझना। तो सत्संग कोई परिपाटी नहीं है, आप हफ्ते में एक दिन सत्संग चले जाते हो, खुश रहते हो, बस सत्संग सुन लिया अब दिन मेरा अच्छा कटे, इस वास्ते सत्संग नहीं हो। इन सिद्धांतों को आपने सीखना ही होता है। ये मसला बड़ा बारीक है, तो इसीलिए आपकी बुद्धि भी आज स्थूल है, मोटी बुद्धि है, बारीक होने में वक्त लगता है। इसलिए लंबे समय तक सत्संग श्रवण करना पड़ता है, लंबे समय तक उस सत्संग पर मनन करना पड़ता है, तब जाकर आपकी बुद्धि में उन सिद्धांतों के प्रति विश्वास बैठता है जिन सिद्धांतों की बात सत्पुरुषों की वाणी और ये शास्त्र कर रहे हैं। इसीलिए जब इन पर विश्वास हमारा आता है तब जाकर हम इस ईश्वर की मार्ग के प्रति सिंसियर होते हैं और अपने जीवन में सुधार के प्रति सिंसियर होते हैं। याद रखिए, जो संस्कार जो स्वभाव मेरे पास आज मौजूद है, ये मैंने ही इनका निर्माण किया, चाहे वो पूर्व जन्म से आए हैं चाहे इस जन्म में मैंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन ये मेरी ही करने के कारण है। तो इसलिए महाराज जी एक बात कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लें, उसके पश्चात ये विषय समाप्त किया जाएगा। महाराज जी से एक प्रेमी ने बड़ा सरल सा प्रश्न किया, महाराज जी कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं? कई लोग कहते हैं ना, क्या करें, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हमारा प्रारब्ध भी ऐसा है, इसलिए हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है। ये बात कही और छुट्टी मिल गई। लेकिन देखो ईश्वर क्या कह रहा है, जब पूछता है महाराज जी कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं, तो महाराज जी बड़ा सरल सा उत्तर देते हैं, प्रेमी ये उत्तर हम सब पर लागू होता है, इसे ध्यान से सुन। प्रेमी बेशक संस्कारों करके ही जीव का स्वभाव बनता है, मगर अपने संस्कार आप बदल भी सकता है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है मगर इस्तेमाल नहीं करता, बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर सकता है, अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म भी करने लग जाता है। इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सतमार्ग में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। जो जो पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है उच्चता को प्राप्त होता है, अच्छी संगत अच्छी तरफ ले जाती है, मलिन स्वभाव वालों की संगत करके बुद्धि मलिनता को प्राप्त होती है, संगत का असर लाजमी है। इस वास्ते बार बार सत संगत पर जोर दिया जाए। देखिए बड़ा स्पष्ट हो गया कि मनुष्य जीवन में सबसे कीमती चीज सत संगत है, अर्थात ऐसे लोगों का संग जिनके अंदर जिनकी बुद्धि में इस विद्या की समझ है और इस विद्या के अनुसार वो जीवन जीने की ईमानदारी से कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में बैठना, वहां इस प्रकार के विचार सुनना ताकि इस प्रकार का की बुद्धि मेरी बन सके, और जब ऐसी बुद्धि बनेगी तो इस प्रकार के कर्म मैं करूंगा जिसको सत्रुगुणी कर्म कहते हैं, तभी जाकर मेरे इस मानव जीवन का उद्धार होगा। इसकी सफलता ओम ब्रह्म सत्य।